चाहकर भी अपना नहीं बना सका था तुम्हें, क्योंकि तुम एक आम इंसान हो। अगर मेरे साथ रहोगे तो पल पल तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था मैं। नहीं चाहता था कि मेरे कारण तुम पर कभी कोई खतरा आए, पर तुम पड़ गई थी इन झंझटों में। चाहकर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं रख पाया, और दीवानगी होते हुए भी बेरुखी दिखानी पड़ी थी तुमसे। मैं भी चाहता था कि तुम्हें खींचकर अपने सीने से लगा लूं, अपने बेकरार दिल को करार दूं, तुम्हें महसूस करके अपनी बेचैनी को मिटाऊं, तुम पर जी खोल कर अपना प्यार लुटाऊं, बताऊं तुम्हें कि मेरी दीवानगी भी तुमसे ही है और हमेशा तुम ही से रहेगी। पर तुम एक इंसान हो, ये सच्चाई हर समय मेरे कदमों को तुम्हारे तरफ पड़ने से पहले ही रोक देती थी। इसीलिए तुम्हारे इतने बार इजहार करने के बाद भी मेरे लबों पर बस इनकार ही रहा। दायरे में बंधा हुआ था मैं, पर तुम्हारे निश्चल प्रेम ने मुझे हर बंदिश से आज़ाद कर दिया था। अब तक नहीं कहा था, पर अब पूरे दिल से कहता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है मुझे तुमसे। जब तक हूँ हर पल मैं तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ, दिल में बसाए प्यार को तुम पर न्योछावर करना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ तुम्हें, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अब विश्वास हुआ कि कोई मजाक कोई झूठ नहीं है ये सब। इजहारे मोहब्बत जरा देर से किया, पर भावनाओं में मिलावट नहीं मेरी। मेरी दीवानगी तुमसे हुई पहली मुलाकात से ही सिर्फ तुम ही से है। अन्वय उसकी आंखों में झांकते हुए अपने दिल की बात उसको बता रहा था, और आन्या खोई हुई सी एकटक उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी बात सुन रही थी। अन्वय चुप हुआ तो आन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब तुमने कभी अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं किया क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं? अन्वय ने छोटा सा जवाब दिया तो आन्या ने फिर से एक सवाल किया, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो अब भी एक मामूली सी लड़की हूं। तुम मामूली नहीं हो आन्या, बेहद खास हो मेरे लिए। पहले मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि प्यार किसी दायरे का मोहताज नहीं। दुनिया में आए हर प्राणी को प्यार करने का अधिकार है। जरूरी नहीं कि आपको उसी से प्यार हो जो आपके जैसा है। प्यार तो एक मीठा सा एहसास है, किसी पर भी आपका दिल आ सकता है, जैसे मेरा दिल आया तुम पर। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंसान हो या मेरे तरह एक वैम्पायर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी मोहब्बत हो, जिसे मैं हर हाल में अपने बाहों के घेरे में महफूज रखना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं अपने प्यार की छोटी सी दुनिया बसाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इंसान बनकर जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम पर अपने प्यार को लुटाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से सारे उल्टे सीधे ख्यालों को निकाल दो। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं इंसानी रूप में तुम्हारे साथ शादी करूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर अपनी दुनिया में शामिल कर लूंगा। उसकी बात सुनकर पहले तो आन्या हैरानी से उसको देखने लगी, और अगले ही पल उसका मतलब समझते हुए खुशी से उछलते हुए उसके सीने से लग गई और उसको अपनी बाहों में कसते हुए बोली, आखिर तुमने अपनी मोहब्बत को कबूल कर ही लिया। अब तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगी। मुझे तुमसे दूर जाना भी नहीं है। अन्वय ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये खड़े रहे। फिर अन्वय ने उसको खुद से दूर किया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो गई हों तो नीचे चले, तुम्हें एक बहुत खास शख्स से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? आन्या ने झट से सवाल किया तो अन्वय मुस्कुरा उठा और उसकी हथेली थामते हुए बोला, वो भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। बता दो ना मुझे किससे मिलवाने लेकर जा रहे हो? आन्या ने फिर से सवाल किया, पर अन्वय ने जवाब नहीं दिया तो आन्या ने चिढ़ते हुए मन ही मन कहा, खड़ूस कहेगा। उसके मन की बात सुनकर अन्वय मुस्कुरा उठा। दोनों कक्ष से बाहर निकले और दोनों को साथ देख जूली भी खुश हो गई। अन्वय आन्या को लेकर नीचे पहुंचा तो अनामिका जी उसके पास आ गईं और प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, कैसी है हमारी बच्ची? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं मां, पर आपके बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, आन्या ने इतनी गंभीरता से कहा कि अनामिका जी की सवालिया निगाहें अन्वय की तरफ घूम गईं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं हुआ है मां, ये लड़की पागल है, कुछ भी कहती रहती है। ओ हेलो, मैं पागल नहीं हूं, समझे? आन्या ने भड़कते हुए कहा और उसको गुस्से से घूरने लगी। अनामिका जी ने भी अन्वय को घूरते हुए कहा, हाँ हमारी बहू बहुत समझदार है, तो आइंदा से उनके बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले सोच लीजिएगा। अगर आपने हमारी बहू के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। उनके मुंह से अपने लिए बहू शब्द सुनकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने जैसे ही अपनी बात खत्म की, आन्या ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, बहू? हाँ बहू, क्यों आपको अब हमारी बहू नहीं बनना?
अनामिका ने पलटकर उसी से सवाल कर लिया तो आन्या खामोश हो गई और उसने अपनी निगाहें झुका ली। चेहरे पर गुलाबी रंगत उभर आई जिसे देखकर अन्वय मुस्कुरा उठा कि इस बेधड़क कुछ भी करने वाली लड़की आज इतनी सी बात से शर्मा रही है। अनामिका जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए आगे कहा, हमने आपसे पहले ही कहा था हम इस बारे में सोचेंगे और आपको अच्छे से जानने और समझने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि आप ही वो लड़की हैं जो हमारे अकड़ू बेटे को सीधा कर सकती हैं। इसीलिए हम आप दोनों की शादी करवाकर आपको अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए अपने पास ले आएंगे। आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं? अब भी आप अन्वय से शादी करना चाहती है ना? आन्या ने झट से हाँ में सर हिला दिया तो अनामिका जी ने उसको अपने गले से लगा लिया। उनके ममता भरे स्पर्श को महसूस करते हुए आन्या की आंखें छलक आईं। वो उनसे अलग हुई और अपने आंसुओं को पोंछने लगी। उसकी आंखों में आंसू देख अनामिका जी ने चिंतित स्वर में कहा, क्या हुआ बेटा, आपकी आंखों में आंसू? क्या आप हमारे फैसले से खुश नहीं है? ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे सिर्फ जीवन साथी के रूप में अन्वय नहीं बल्कि उनके साथ माँ भी मिल रही है। बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसती आई हूँ। आज जब आपने अपने गले से लगाया तो माँ की याद आ गई। अगर वो होती तो ऐसे ही मुझे अपने सीने से लगाकर रखती ना। आन्या की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी बात सुनकर अनामिका जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसे अपने गले से लगाकर कहा, इतनी प्यारी बच्ची को कोई भी माँ एक मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करती। हम समझ सकते हैं बिना माँ के रहना कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, पर अब आप माँ के प्यार के लिए और नहीं तरसेंगी। अब से आप हमारी बेटी हैं और हमसे आपको उतना ही प्यार मिलेगा जितना हम अनवय से करते हैं। आन्या, लगता है तुम्हें उस खास शख्स से नहीं मिलना जिनसे मिलवाने में तुम्हें लाया था। आन्या को उनके गले लगे देख अनवय ने जैसे ही ये कहा, आन्या झट से उनसे अलग हो गई और फट से बोली, नहीं मिलना है ना। उसकी हड़बड़ाहट देख सब मुस्कुरा उठे। अनवय ने उसकी हथेली थामी और शिखर जी के सामने आकर खड़ा हो गया। आन्या कभी उन्हें तो कभी अनवय को देखने लगी। ये मेरे पापा हैं, अनवय ने जैसे ही ये कहा आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से उसे देखा तो उसने सहमति में अपनी पलकें झपका दी। आन्या ने झट से झुककर उनके पैर छू लिए पर उन्होंने उसको खड़ा किया और दोनों को साथ में अपने गले से लगाकर बोले, हमेशा खुश रहिए और यूं ही एक दूसरे का साथ देते रहिए। आन्या उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ देर सभी वहीं बैठे साथ में डिनर किया। उसके बाद शिखर जी के साथ अनामिका जी अपने कक्ष में चली गईं। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आईं तो शिखर जी पलंग पर बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। अनामिका जी आकर उनके पास बैठ गईं।